हरे कृष्ण। श्री रामनवमी शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हम श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसका सार किस तरह से भगवान के भक्त केवल बुद्धि से समझना, ये बात कि मैं भगवान का एक सेवक हूं ये, और एक सेवक की भावना को स्वीकार करके सेवा में रत होना, अपने हृदय को लगाना, भावना प्राप्त करना, इसमें अंतर है। और जब तक केवल भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होने हेतु हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, ये जो प्रेरणा है ये ज्यादा दिन हमारे भक्ति में जीवन में चल नहीं सकता अगर वो भगवत भावना, प्रेम की जो प्रेममयी सेवा है वो अगर नहीं हो। और भक्ति का मतलब है शरणागति। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्तु। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, प्रायशः सबसे महत्वपूर्ण श्लोक शरणागति वाक्य, जहां भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि आप शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से सारे पापों से मुक्त करूंगा, निश्चिंत रहो, आप निर्भय हो जाओ। और ये हर क्षण हमारे सामने है, ये प्रेम का लक्षण है। भगवान स्वतंत्रता देते हैं, हमारे सामने हमेशा दो क्या बोलते हैं चॉइस, पर्याय। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। एक जगह कृष्ण है एक जगह माया है, दोनों हमें पुकार रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज, दोनों बोल रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। पर एक कैसा है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता, जो माया के आश्रय मोहिनीम श्रिता आश्रित लेते हैं उनकी सारी आशाएं निराशा हो जाती है, मोघ कर्माणो सारे कर्म उनका निष्फल हो जाता है, मोघ ज्ञान उनके सारे ज्ञान अज्ञान में अज्ञान साबित होते हैं, सुख नहीं दे पाता है, आनंद नहीं दे पाता। पर भगवान की शरण जाए तो ये आश्वासन दे रहे हैं भगवान, तो ये हर क्षण हमारे सामने रहता है। और शरणागति का मतलब भक्ति को चुनना, इस स्थिति में मैं कैसे कृष्ण की ओर बढ़ सकता हूं, कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूं, शास्त्र के अनुसार कार्य कर सकता हूं। और माया को चुनना मतलब अपने इंद्र तृप्ति से प्रेरित होकर निर्णय लेना कोई, तो ये स्वतंत्रता हमेशा रहती है कभी भी। और प्रभु रामचंद्र की लीला में एक जगह पर ये बहुत सुंदर से उभर आता है, कैसे एक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग किया, भगवान की शरण गया और उसका परिणाम क्या हुआ। अगर ये अध्ययन करेंगे थोड़ी गंभीरता से, थोड़े ठंडे दिमाग से, तब हम समझ पाएंगे कि शरणागति का मतलब क्या किस तरह से शरणागत होना चाहिए, शरणागत होने में क्या समस्याएं आएंगी और उस समस्याओं को कैसे पार करना चाहिए। ये प्रसंग रामायण के युद्ध कांड में आता है। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता का अन्वेषण करते हैं, सीता को ढूंढने के बाद उन्हें आश्वासन देते हैं और तत्पश्चात विरोधी ध्वंसन बुरी तरह से राम को एक अच्छे तरह से सीख सिखा के आते हैं, आधा लंका को जला के आते हैं और फिर जब प्रभु रामचंद्र को खबर आता है, हनुमान जी आके खबर देते हैं, तो सारे वानर सेना तैयार होकर लंका के समुद्र के उस पार तैयार हो जाते हैं। सब समुद्र के पास आ गए, पार करना बाकी है। जब रावण को ये सूचना मिलती है जासूसों द्वारा कि ऐसा हुआ है, तो रावण तुरंत अपने सारे मंत्रियों और सेनापतियों का एक सभा बुलाता है। लंका खतरे में है, रावण का चेहरा थोड़ा मुरझाया रहता है क्योंकि हनुमान जी की क्रियाएं वो देखा रहता है और कहता है कि एक बंदर प्रभु रामचंद्र के सेना का एक योद्धा आकर इतना टहस नहस कर गया हमारे यहां, मेरा सारा अशोक वाटिका नष्ट कर दिया, 80,000 सेनाओं को मार दिया, मेरे बड़े बड़े सेनापतियों को मार दिया, कुछ मंत्रियों को मार दिया, मेरे प्रिय पुत्र अक्ष कुमार को मार दिया और उसकी हिम्मत मेरे सामने आकर मुझे संदेश भी दिया राम का, और उसकी पूंछ जलाने पर उसने आधा लंका जला दिया और पार करके चुपचाप चला भी गया, मतलब मुंह पे एक तमाचा मारना और चले जाना। और जब सब पूरी सभा में सारे उसके मंत्रियां और उनके सेनापति एकत्रित हो जाते हैं तो रावण कहता है कि देखो, तीन प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम लोग कौन है? जो किसी परिस्थिति में, जैसा एक सभा बुलाया, सभा बुलाने का उद्देश्य क्या बता रहा है, कोई परिस्थिति में विधाता के ऊपर विश्वास रखना कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये विश्वास रखते हुए और मंत्रियों से अच्छे तरह से मंत्रणा लेकर, हो कैन वी पुट इट ऑफ, बाद में करेंगे डिस्ट्रैक्शन, मंत्रणा लेकर वरिष्ठों से सलाह लेकर फिर वो निर्णय जो लेता है, तब सबसे और सब लोग सहमत होते हैं तब वो कार्य करता है, वो उत्तम व्यक्ति है। और मध्यम व्यक्ति कौन है? जिसको विश्वास है विधाता के ऊपर पर हड़बड़ी में बिना किसी से चर्चा किए, बिना उसका परिणाम सोचे तुरंत एक निर्णय ले लेता है, ये मध्यम व्यक्ति है। और तीसरा, विधाता के ऊपर उसको विश्वास नहीं है और स्वेच्छा से जैसा मन में आया वैसे कर देता है, ये अधम व्यक्ति है। मैं तो उत्तम आदमी हूं, आप सबको मालूम है, इसीलिए मैं आप सबको बुलाया हूं। और फिर कहता है निर्णय लेने से पहले भी तीन प्रकार के लोग होते हैं। निर्णय लेने के पहले क्या करना चाहिए? बोले जब पूर्ण रूप से सब व्यक्ति सहमत हैं और एक परिस्थिति को बड़ी सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, क्या बोलते हैं, सोच समझकर और सब लोग सहमत होकर जो निर्णय लेते हैं वो उत्तम श्रेणी का निर्णय है। मध्यम श्रेणी का मतलब है अलग अलग लोग अलग अलग मत लिए हैं, पर अभी परिस्थिति ऐसा है, जबरदस्ती इमरजेंसी के कारण सबको जबरदस्ती एक निर्णय लेने में मजबूर करा के निर्णय लेके सबसे सहमति लेकर चलो कर लेते हैं, ये मध्यम तरीका का। और सबसे अधम तरीका कौन सा है? हर एक व्यक्ति का अपना अपना मत, किसी का मत मतलब एक सहमत नहीं है, और कोई निर्णय कोई मतलब सहमत नहीं है, और ऐसे में निर्णय ले लेना, ये बोले सबसे अधम तरीके का है। और इस ये कह के वो कहता है कि इसलिए मैं अभी आप सबको बुलाया हूं और अभी मैं आपको कहने वाला हूं, क्योंकि एक बंदर ने ऐसे तहलका मचा के यहां से गया है और अभी मुझे सूचना आया है कि समुद्र के उस तट पर एक दूसरा समुद्र है, सारे वानरों का समुद्र, 100 मील तक फैले हुए हैं सब लोग, केवल सर 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 दिखता है बस उन लोगों का, इतने लोग आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है? तो सारे राक्षस लोग, उसके सेनापति एक से बढ़कर एक, सब अपना लॉयल्टी, क्या बोलते हैं, रावण के प्रति अपनी निष्ठा दिखाना चाहते हैं, और हरेक बड़ा अहंकारी अपना वो अहंकार दिखाना चाहता है, और शत्रु के जो शक्तियां हैं न उसको उसके बारे में सोचना चाहते हैं वो, न उसके परवाह करते हैं अहंकार के कारण, अरे कौन है, परखते नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है या अधर्म है, केवल एक चीज वो सोच रहे हैं, हमारी शक्ति और हमारा धीरज धैर्य, हम डेयरिंग है और हमारी शक्ति है, इसके ऊपर अहंकार, धर्म है या अधर्म है नहीं, शत्रु की शक्ति क्या है उसकी कोई चिंता नहीं, अपना अहंकार दिखाना और रावण के प्रति अपना निष्ठा दिखाने का प्रयास। ये करते हुए एक एक व्यक्ति उठता है, सबसे पहले प्रहस्त नाम का एक मंत्री उठता है और कहता है ये बंदर लोग और मनुष्य लोग क्या कर पाएंगे हम लोग हमारे जैसे राक्षसों का, और जहां तक हनुमान आके टहस महस करके गया वो हम सब पी के सोए हुए थे, अचानक आ गया, वो पहले से बोल के आता तो हम लोग दिखाते उसको, सोए हुए थे आके धड़धड़ाकर चला गया बस। फिर भी प्रभु अगर आप सिर्फ मुझे एक बोले होते ना तो उसको पकड़ के ला के मार के टुकड़े करके ला के दिखाया होता आपको। खैर अभी जो हो गया सो हो गया। फिर दुर्मुख नाम का एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है ये बंदर और ये मनुष्य लोग जो लोग हैं आप बोल रहे हो सिर्फ मुझे भेजो, मैं अकेला काम करके आ जाऊंगा वापस, आप लोगों को कोई आने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की, क्यों इतना चिंतित कर रहे हो, इतना बड़ा सभा लेने क्या जरूरत। वज्रद्रमष्ट्र बोलता है अगर भी वो शक्तिशाली आपको लगता है एक बंदर ऐसा है तो कितने लोग होंगे उधर लाखों, एक काम करेंगे ना, हमारी एक टोली को लेके मैं जाता हूं, उन लोगों को वानर का ड्रेस पहना देता हूं और हम लोग बोलेंगे हम लोग भरत महाराज ने बोला है हमको, इसलिए आए हैं, और लोग घुस जाएंगे और अंदर से उनके अंदर भेद मतभेद पैदा करके अंदर ही अंदर रात को सब खत्म कर देंगे। बोलो आप, हाँ बोलो बस। निकुंभ, कुंभकर्ण का बेटा, वो उठकर कहता है कि न केवल वो सब सेना उनके साथ जो आप कह रहे हैं ना, दो वनवासी हैं रावण और लक्ष्मण, हमें राम और लक्ष्मण और सुग्रीव, तीनों को मैं खत्म करके आऊंगा। सिर्फ बोलो हाँ बोलो, क्या समझ रहे हैं लोग अपने आप को। अंत में इंद्रजीत उठता है, इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं, इंद्रजीत उठता है और फिर अपना ढोंग मारता है बड़ा कि कैसे कैसे लोगों को मैंने हराया, इंद्र को मैंने बांध के लाया था, ब्रह्मा जी के कहने पर छोड़ा आपने, नहीं तो पिताश्री क्या हुआ होता आपको मालूम है। कैसे कैसे बड़े असुरों को, आई मीन देवताओं को मैंने पकड़ के हराया हूं। तो ये सब कहते रहते हैं और तब विभीषण उठता है। विभीषण भी अपना निष्ठा दिखाता है पर उसे अहंकार नहीं है, सर के ऊपर चढ़ा नहीं है अहंकार, और शत्रुओं के शक्ति को अच्छी तरह से वो परख रहा है, धर्म अधर्म क्या है अच्छी तरह से जानता है। और फिर वो कहने लगता है कि भैया, बड़े भाई है रावण, कहता है कि भैया ये जो आप दंड देने का सोच रहे हो ये हमेशा अंतिम पर्याय होना चाहिए, पहले साम दान और भेद, ये आपने सोचा ही नहीं, न उनके साथ साम करने का प्रयास किया, कुछ उनको कुछ पैसा वैसा दे के समझा दिया या उनके अंदर थोड़ा मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, आपने कुछ किया ही नहीं, सीधा आक्रमण करने का सोच रहे हो, ये गलत बात है। और आक्रमण करना तब अच्छा है जब सामने वाली जो शत्रु है वो बड़े दुर्बल हैं और बहुत ही थक गए हैं और खत्म होने को आ गए हैं और आपस में उनका बहुत ही मतभेद है और आपस में झगड़ रहे हैं और किसी का अनुभव नहीं है। अगर ऐसा शत्रु सामने खड़ा हो तो फिर सीधा ये सब दान साम दान भेद करने की जरूरत नहीं, सीधा आक्रमण करो। पर आप शत्रु का ठीक से शक्ति समझ नहीं पा रहे हैं, एक बंदर ने आके इतना तहस महस किया, इतना तहलका मचाया, आप सोच लो कि सारे इतने सारे जो सेना है उनके, वो सब अगर जब आक्रमण करेंगे तो क्या होगा। और राम ने आपके प्रति गलती क्या किया है, आपके प्रति किया क्या है, वो क्या आक्रमण किया है, वो कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप थे, राम तो अपने आप वहां बैठे हुए थे। और आप बोलोगे नहीं नहीं खरदूषण को मारा, 14,000 लोगों को मारा, वो अपना आत्मसंरक्षण के लिए, जब उन लोगों ने आक्रमण किया, खरदूषण ने आक्रमण किया तब उसे मारा। और जहां तक शूर्पणखा का सवाल है, वो खुद गई नाक अड़ाते हुए, लंबी नाक रखकर सीता और राम के बीच में नाक अड़ाई उसने, तो नाक काटना पड़ा, बहुत अड़ा रही थी नाक, तो उनकी गलती नहीं है। और बल्कि मैं कहूंगा आपने जो निर्णय लिया सीता का अपहरण करने का, ये गलत बात है, राजा को दूसरे की पत्नियों का संरक्षण करना चाहिए, आप उसको उठा के ले आए, ऐसा भी नहीं कि लड़के उन दोनों को बाहर भगा के पीछे से उठा के ले आए। राम धर्मात्मा है, धर्म के पथ पर चल रहा है, तो आक्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी हार होने की संभावना है, तो इसीलिए हमें पहले सुधरना चाहिए, हमारी गलतियां जो उसको सुधारो, बाद में आक्रमण करना, तुरंत सीता को दे दो वापस, ये सबसे अच्छा। और इस तरह से ये रावण की जितने आपकी जो जितनी वंश है ये लोग बच जाएंगे। और भैया एक चीज बता दूं, क्रोध अच्छी बात नहीं है। क्रोध जो है अपने धर्म को और अपने सुख को नष्ट कर देता है। विभीषण की यह बात सुनकर रावण थोड़ा सोच में पड़ गया, तुरंत उसने सभा को बंद करा दिया, बोला ठीक है कल मिलेंगे, क्योंकि सबके सामने एक बोल दिया इतना खोल मुंह खोल के, तो उसने कहा ठीक है कल मिलेंगे। अगले दिन सुबह सभा में आने से पहले विभीषण फिर उनसे मिलने गया रावण से, और वहां जाकर विभीषण ने रावण को वैयक्तिक रूप से मिलकर कहा कि भैया अच्छे तरह से गुणगान किया, अपने भाई का गुणगान किया, सचमुच में शक्तिशाली था रावण, कम नहीं था वो। हनुमान जी भी जब देखे रावण को बोले वाह ये अगर भक्त होता तो इंद्र बन जाता, ही इतना सुंदर है, इतना शक्तिशाली है, बहुत आकर्षक है। तो बोले जब से आपने, विभीषण कह रहे हैं रावण को, जब से आपने सीता को लाया है मैं लंका में सब अमंगल चिन्ह देख रहा हूं। यज्ञ में जब हम हवन करते हैं तो अग्नि से ज्यादा धुआं निकल रहा है, और जो भी हम भोग लगाते हैं अपने देवताओं को मंदिरों में, उसमें से केवल चींटी चींटी भर भर के आती है। हमारे गैया जो है ठीक से कुछ भी दूध नहीं देते, और सारे घोड़े और गधे जितने भी हैं हमारे, हम सब मिलाकर बोले हमेशा रोते रहते हैं। कौवे और क्या बोलते हैं वल्चर्स, गीदड़, ये बहुत ज्यादा, और वो भी चिल्ला रहे हैं। और ये मत समझना कि मैं डर के मारे कह रहा हूं, या मैं थोड़ा भयभीत हो गया हूं, या मैं अज्ञान के कारण कह रहा हूं, नहीं, इन चीजों से असर पड़कर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, जो देख रहा हूं वो कह रहा हूं और तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। रावण ने कहा तुम जो भी कह रहे हो अगर भी ठीक भी है तो भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज तक मुझे हरा पाया है, बड़े बड़े देवताओं को मैंने हरा दिया है, कोई मेरे सामने किसकी हिम्मत हो, और ऐसे मामूली जीव, कुछ मनुष्य और कुछ वानर, मैं किसी की परवाह नहीं करता। और जहां तक तुम कह रहे हो सीता को वापस करने का, विभीषण भूल जाओ, सीता ने मेरे हृदय को जीत लिया है, सीता लंका से एक कदम नहीं जाएगी। अब बोलो कुछ कहना है तुम्हें। फिर दूसरा मीटिंग, दूसरा सभा आयोजित होता है, ये सुबह का कार्यक्रम था, बाद में 10 बजे सभा शुरू हुआ। सभा में रावण कहता है कि दूसरी बार सभा बुलाने का कारण यह है कि मेरा भाई कुंभकर्ण जो 6 महीने के बाद एक दिन उठता है और फिर 6 महीना सोता है, आज उसका उठने का दिन है, और आज आए हैं हमारे कुंभकर्ण जी, सब लोग 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत कीजिए। और इस तरह से हरि बोल नहीं, रावण बोल, फिर कुंभकर्ण आया हुआ है इसीलिए मैंने सभा बुलाया। और कहता है कि सुनो मैं तो सीता को अपहरण करके लाया हूं, और सीता इतनी सुंदर है, मैंने पूर्ण रूप से निश्चय किया है कि मैं उसे निश्चित रूप से अपने पास ही रखूंगा, और मैंने उसको कहा कि मेरी शरणागत हो जा, वैसे भी मैं राम को खत्म करने वाला हूं, पहले ना ना कह रही थी, अभी उसने स्वीकार किया है, 1 साल का समय दो मुझे, 10 महीने हो गए, 2 महीना बाकी है बस, जो एक झूठ था सरासर, ये बोला था 1 महीने का टाइम इसने दिया, नहीं तो मैं खा जाऊंगा तुझे टुकड़े टुकड़े करके आचार बना के खाऊंगा, बोला रावण। और ये कह रहा सीता ने स्वीकार किया है, और मैं पूरे उसके पीछे पागल हूं, और ये जो वानर और मनुष्य वहां खड़े हैं इनसे हम डरे क्यों, जिनको हम आसानी से हरा सकते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचकर मुझे बताएं कैसे योजना बनाएं इनको हराने के लिए। ये इसकी मंत्रणा सभा है, मतलब पहले से डिसीजन ले लिया, कह दिया कि मैं सीता को नहीं लौटाने वाला, झूठ भी बोला कि वो मेरी हो गई है एक साल के बाद, उसे 2 महीने का टाइम है, कह भी दिया कि हम लोग लड़ाई करने वाले हैं, सामदान कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ उनको इतना टाइम दिया जा रहा है, कैसे मारे बताओ सर। अब समझ लो कि रावण के सभा में क्या होता है। और फिर कहता है हां, बोले शरणागति आउट ऑफ क्वेश्चन, शरणागति तो हम नहीं करने वाले, युद्ध तो होना ही है, सिर्फ आप लोग स्ट्रेटेजी बताओ बस। कुंभकर्ण उठता है, कहता है कि भैया ये मूर्खों की सभा है, ये तुमने सीता को उठाने से पहले हम लोगों से पूछा क्या था, जो काम सब कर दिया, अब जब समस्या सर पे आए तो हम लोगों को मंत्रणा लेने के लिए बुलाया, आपको शर्म आनी चाहिए। और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे फटाक से निर्णय लेता है, निश्चित रूप से हमेशा पछताएगा वो। और जितना भी आप शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर अधर्म के पथ पर चल रहे हो, किसी और की स्त्री को उठा के लाए हो आप जबरदस्ती करके, उसके पति के न होने पर अनुपस्थिति में, ये निश्चित रूप से यशस्वी नहीं होगा। फिर भी क्योंकि तुमने निर्णय ले लिया है, मैं हूं, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। बुद्धि थी उसकी कुंभकर्ण की, पर निष्ठा गलत जगह पे लगाया, डेयरिंग था वो पर गलत चीजों पे। कुछ लोग होते ना टेररिस्ट लोग, आतंकवादी भी, प्राण की परवाह नहीं करते, बॉम्ब लगा के हराकिरी बोलते हैं उसको, जापान में ह्यूमन बॉम्ब, बॉम्ब लगा के गया और फोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए, 4 लोगों को मार के मरा। डेयरिंग है, कम नहीं है, निडर है, पर गलत उद्देश्य के लिए। निष्ठा है पर गलत जगह में उस निष्ठा को डाला है। कुंभकर्ण की ऐसी स्थिति है, हमारे अंदर भी कुंभकर्ण की कभी कभी आ जाती है बुद्धि। फिर महापार्श्व नाम का एक मंत्री उठा और बड़े अच्छे अच्छे, मतलब कुंभकर्ण ने थोड़ा थप्पड़ मारा था, वाक थप्पड़, वाक बाण चलाया था, तो उसको ठंडा करने के लिए महापार्श्व बोला, कोई चिंता नहीं, हम लोग सब हैं, एक 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 सब संभाल सकते हैं, कोई चिंता मत करो, सिर्फ बोलो अब क्या करना है। और इस तरह से रावण, एक व्यक्ति ने पूछा, एक व्यक्ति खड़े होकर एक मंत्री ने पूछा कि महाराज ये क्यों आप इतना सोच रहे हो, एक साल समय दे रही है, वो कौन देती है समय होने वाले, अभी जाके बलात्कार करो उसको। तो रावण बोलता है तेरे कहने की कोई जरूरत नहीं थी मूर्ख, ऐसा नहीं कहा, पर उसने कहा ठीक है, एक रहस्य आज तक तुम लोगों को नहीं बताया था, अभी मैं बता देता हूं। एक बार मैंने रंभा का जब बलात्कार किया था और तब मणिग्रीव नलकुवर उन लोगों ने, और बाद में ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया है कि स्वेच्छा से अगर एक स्त्री सहमत नहीं होती और तुम उसका बलात्कार करोगे तो उसी समय तुम्हारा सर 100 टुकड़े हो जाएंगे, बस इसीलिए अभी तक उसको छोड़ा हूं। दक्षिण भारत में एक बड़े विद्वान हुए, तथाकथित विद्वान, वो कहते हैं कि रावण पूजा करो उसकी, क्या ब्रह्मचारी था, देखो सीता को 1 साल रखा, छुआ नहीं। मूर्खों को यह नहीं मालूम रामायण वाल्मीकि का पढ़ा नहीं है, ब्रह्मचारी था ये रास्कल, लाखों स्त्रियों को पकड़ के लाया था, उसे मालूम था सर पे तलवार लटक रहा है, ये ब्रह्मचर्य उसका। वाल्मीकि रामायण ठीक से पढ़ते नहीं है लोग, भगवान मामूली है, बोलते राम ऐसे मामूली था, भगवान कौन है? रावण की शक्ति सबने देखी, भक्ति नहीं देखी। वाह, एक सीरियल आया था बंबई में, भक्ति शक्ति सबने देखा पर भक्ति किसी ने ना देखा, कहां था देखने के लिए? तो दुर्भाग्यवश ठीक से न समझने के कारण, उल्टा सीधा रामायण पढ़ने के कारण। और एक हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान पंडित, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, कर्ण को हीरो बनाया है और अर्जुन को खलनायक। ये बुद्धि भ्रष्ट होने की परंपरा में श्रवण नहीं करेंगे तो यही होता है। तो यथा धर्म अधर्म, अधर्म को धर्म मानना, धर्म को अधर्म मानना, उसके ऊपर भी बहुत सुंदर आर्टिकल हमारे जाओ देवा चगावा में आया है, पढ़िए, जरूर पढ़िए। कौन सा वो पुस्तक कौन सा है? नहीं नहीं वो कर्ण का मृत्युंजय। कहां भी मैं जाता हूं महाराष्ट्र में, कहां भी कोई भी कॉलेज में जाता हूं, कॉलेज के लड़कों का एक बार गीता कोर्स किया था तो 3-4 माताएं आई थी, वो भी पूछ रही थी। कर्ण तो इतना बड़ा हीरो था, महाभारत पढ़े नहीं है ठीक से, वो रामायण पढ़े नहीं तो ऐसे लगेगा क्या ब्रह्मचारी है रावण, देखो सामने भोग वस्तु रखते हुए भी ओह छुआ नहीं एक साल तक, उसके मुख से खुद निकल रहा है क्यों मैं नहीं पकड़ रहा हूं। तो फिर विभीषण फिर से उठता है, मालूम है कि ये जो मैं वाक हमारी लड़ाई हो रही है, मतलब कह रहा हूं, ये मेरा बड़ा भाई कामुक है, इतना काम वासना से भ्रष्ट हो गया है कि मेरी बातें नहीं सुनने वाला, फिर भी मैं उसका शिव चिंतक हूं, मेरा पूरा प्रयास मैं करूंगा, कोशिश करूंगा कि शायद वो सुधर जाए। उठता है और कहता है कि भैया जिस सीता के पीछे तुम पड़े हो, वो सीता का शरीर एक सांप जैसा शरीर है वो, और उसका मुस्कुराना उसके क्या बोलते हैं सांप के जो ये होते हैं ना जिह्वा, ऐसी है वो, और उसका दुख उसकी पीड़ा जो है वो उसका जहर है, और उसके जो 5 उंगलियां हैं वो 5 सांप के फन जैसे हैं, और उस सांप को तुम अज्ञान पूर्वक अपने गले में लपेट के चुपचाप बैठे हुए हो, तुरंत इस सांप को निकालकर छोड़ दो। राम के बाण जो हैं अचूक हैं, कभी चूकते नहीं हैं। तुमने सुना नहीं, वाली जिसने तुम्हें इनडायरेक्टली यहां कहा नहीं है, पर वाली को रावाली ने रावण को हराया था, पकड़ के रखा था उसे, उसको एक बाण में प्रभु रामचंद्र ने खत्म किया है। 7 ताल वृक्षों को भेद के, पृथ्वी को भेद कर, पाताल को भेद कर आसमान से वापस जाके आया है एक बाण, राम बाण बोलते हैं ना, राम बाण दवा, सारे बीमारियों का राम बाण, मतलब दवा खाया तो सारा बीमारी दूर, पूरा काम करके ही आता है वापस, और सारे मंत्रियों की ओर मुड़ के बोलता है आप लोगों को मालूम है कि रावण बहुत बड़ा जहाज है जिसमें एक बड़ा छेद है, क्या? उसका काम वासना, और ये काम से आतुरता होकर, यही एक स्त्रियों के प्रति इसकी जो दुर्बलता है, ये सबसे बड़ा इसका कमी है, और आप सब लोग जानते हो, कहता है, और आप लोग ठंडे दिमाग से सोचो क्या ये किया इसने जो किया सही है, तुम अपने प्रभु की भलाई का सोचो, मूर्खतावश अहंकारवश बिना सोचे समझे कुछ मंत्रणा मत दो। ये सब सुनकर इंद्रजीत तंग आ जाता है और उठता है, बंद करो बकवास, बहुत सुन लिया मैं, बोले ये हमारे चाचा कायर है, राक्षस योनि में पता नहीं ये कैसा पैदा हो गए, इसके अंदर कुछ धीरज नहीं है, तेज नहीं है, डरपोक आदमी है ये, जैसे जैसे दुर्योधन ने उठकर कहा था विदुर के प्रति, सेम धृतराष्ट्र अंधा जैसा बैठा हुआ था, ऐसा कामांध होकर रावण बैठा हुआ है, और उसके चमचे चारों ओर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा चमचा उसका इंद्रजीत। और विदुर को सेम ऐसी शब्द कहा था कि यह दासी पुत्र है, भ्रमित हो गया है, यह हमारा मित्र के रूप में शत्रु आके बैठा हुआ है, इसको तुरंत यहां से निकाल दो। विभीषण उठ के कहता है कि भैया ये सब जो बैठे हुए हैं मित्र के रूप में तुम्हारे शत्रु हैं, मूर्ख हैं, ये जान नहीं रहे हैं क्या सही है क्या गलत है क्या सत्य है, इनकी तुम मत सुनो। मालूम है कि सुनने नहीं वाला रावण, फिर भी उनका कर्तव्य कर रहे हैं। रावण बोलता है बहुत हो गया बहुत हो गया बस। बोले मैं निर्णय ले चुका हूं। बोले एक सांप के साथ घर में रहना अच्छा है, तेरे जैसे तथाकथित रिश्तेदार निकल जा तू यहां से। और पूरी तरह से अपमान कर विभीषण को कहता है कि तुरंत यहां से निकल जा। तो विभीषण तुरंत गदा एक हाथ में रखकर आसमान के ऊपर चला जाता, ऊपर राक्षस रूप निकाय होता है, आसमान पर जाता है और उसके साथ उसके चार मंत्री जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसके अनुयायी चारों राक्षस के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर आसमान की ओर जाता है और अंत में कहता है कि भैया मैं जानता हूं तुम्हारे विनाश की ओर जा रहे हो, पर फिर भी मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, जो मैं ठीक समझा मैंने कह दिया, तुम सुनना नहीं चाहते हो, तुम्हारा भला हो, मैं जा रहा हूं। तुरंत वहां से जाता कहां है, आधे घंटे के अंदर प्रभु रामचंद्र की जो छावनी है वहां आकाश में जाकर खड़े हो जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, सोचने वाली बात हमें ध्यान में रखना है, सिद्धांत तत्व का ज्ञान। कथा सुनना कथा के साथ साथ सिद्धांत समझने की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विभीषण का चरित्र में खासियत क्या था, विभीषण ने भी तपस्या किया था राम रावण और कुंभकर्ण के साथ। जब ब्रह्मा जी ने वर मांगा तो विभीषण ने कहा था कि कोई भी परिस्थिति में धर्म का पथ मैं ना छोड़ू, बस यही मेरे को आशीर्वाद दो, जो सही है वही मैं करूं, धर्म का पथ मैं ना छोड़ू। हालांकि विभीषण बड़े नम्र थे और बड़े मृदु बोलने वाले, पर उनकी जो दृढ़ निश्चय और उनका उद्देश्य बड़ा साफ था, अगर जरूरी पड़ती तो सत्य कहने के लिए हिचकिचाते नहीं, वो भले दूसरों को बड़ा रूड क्या बोलते हैं बहुत ही कड़वा लगे और अच्छा नहीं लगे, और फिर भी जीवन भी अगर खतरे में पड़ जाए फिर भी सत्य बोलने के लिए तैयार थे उस व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं था कि विभीषण रावण को प्रेम नहीं करता था, पर विभीषण धर्म का प्रेम रावण के प्रेम से ज्यादा था, उसको अपने बड़े भाई को प्रेम करता था वो, पर धर्म के प्रति जो प्रेम था वो भाई के प्रेम से ज्यादा था। ऐसा नहीं था कि रावण के प्रति कम निष्ठा थी उसकी, देश के प्रति कम निष्ठा थी, ऐसा नहीं, पर अपने भाई को बचाना और अपने वंश को बचाना उसकी चिंता उसको ज्यादा थी, और इसीलिए जो भी जरूरत है वो करने के लिए तैयार हुआ। ये एक महत्वपूर्ण गुण है शरणागति के लिए, और अज्ञान या आसक्तियों से निकलकर शरणागत होने के लिए, पाप करने के लिए भी ना, खुलेआम पाप करने के लिए भी धड़स चाहिए, क्या बोलते हैं धड़स है ना, करेज। कभी कभी हम देखते हैं खुल्लम खुल्ला खड़े होते इधर, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, उसके लिए भी धड़स करना चाहिए, पर मैंने गलती किया ये स्वीकार खुलेआम करने के लिए उससे भी ज्यादा धड़स चाहिए, और उससे भी ज्यादा धड़स चाहिए सीधा मुंह पे बोलने के लिए, नहीं भले तू कोई भी हो, अगर तू गलत है तो गलत है। तो रावण बहुत धड़स किया उसने सीता को पीछे से जाकर उठा के लाना, पर उसकी यह धड़स नहीं थी स्वीकार करने के लिए कि मैंने जो किया गलत किया। विभीषण कम से कम स्वीकार किया कि यहां हमने जो किया गलत किया। और विभीषण की और एक खासियत थी कि उसे मालूम था कि मैं अगर ये कहूंगा तो मेरे को लंका से निकाल दिया जाएगा, यहां मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, यहां मेरा संरक्षण है, मैं यहां सम्मान सम्मान मिल रहा है मेरे को, अगर मैं कहूंगा तो सब मैं खो जाऊंगा। पर वो खोने के लिए तैयार थे और लोग मुझे गलत मानेंगे, तैयार थे वो। और शरणागति जो प्रभु रामचंद्र के प्रति, वो भी थी उनके अंदर। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये उसका लक्षण है। सब चीजों को त्यागने के लिए, अपना सुरक्षितता, अपना ये सब धन, रिश्ते नाते, सब चीज त्यागने के लिए तैयार थे अगर वो धर्म के विरुद्ध हो रहा हो। इसीलिए विभीषण का गुणगान करते हैं। और इस समय वाल्मीकि एक शब्द उपयोग करते हैं श्रीमान विभीषण को, श्रीमान विभीषण कहते हैं। क्यों श्रीमान? क्योंकि उन्हें सही निर्णय लिया, सही उद्देश्य के लिए इस व्यक्ति को छोड़कर प्रभु रामचंद्र की शरण में आने के लिए। तो आचार्य कहते हैं विभीषण की जो ये जो गदा उन्होंने हाथ में लिया, ये है माम एकम शरणम रजा, ये शरणागति का लक्षण है। और उनके जो चार मंत्री हैं जिसके साथ वो निकले, एक साधक के लिए ये चार योग्यताएं जरूरी है। पहला, नित्य अनित्य क्या है इसका विवेक, क्या सही है और क्या गलती है ये जानने का विवेक साधक को हमेशा होना चाहिए। क्या नित्य है और क्या अनित्य है, अनित्य चीजों को त्याग कर नित्य चीजों को स्वीकार करने का विवेक। इह अमूत्र फल भोग विराग, इस संसार का भोग और स्वर्ग का सुख भोग दोनों को त्यागने के लिए तैयार, अगर ये भगवान की शरणागति के लिए प्रतिकूल है तो उसको त्यागने के लिए तैयारी। तीसरा, मुमुक्षुत्व के भौतिक संसार से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा। और शमदमादि संपत्ति, अपने इंद्रियों का संयम और मन को नियंत्रण करने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो करने के लिए तैयारी। तो ये चार मंत्रियों को लेकर, माम एकम शरणम रजा ये लेकर विभीषण आया था शरणागत होने। आसमान में मानो बादल आ गए ऐसे सुग्रीव को पता चला। सुग्रीव बाहर खड़ा था, तुरंत उसने देखा, अरे राक्षस आ रहे, पांच, मेरु पर्वत जैसा विशाल शरीर, साक्षात इंद्र जैसे लग रहा था, विभीषण भी कोई कम नहीं था। चार राक्षसों के साथ आकर एकदम चकाचक ऐसे सुंदर आभरण पहना, आभूषण पहना हुआ आसमान में खड़े हो गए, उतरे नहीं नीचे। और वहां से वानरों को एक संदेश भेजा, आपके जो प्रमुख व्यक्ति है उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूं। तो सुग्रीव वहां आया, सुग्रीव तुरंत हनुमान को कहा, तैयार हो जाओ, सब ले लो, खत्म कर देते इनको, ये लोग निश्चित रूप से अभी आए हैं, सब नाटक कर रहे हैं, तुरंत इसको मारना है, तैयार लेके खड़े हो गए। तुरंत विभीषण ने कहा, ये देख करके समझ गया ये इनका उद्देश्य क्या है। तो विभीषण ने कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं दुर्भाग्यशाली रावण जो है उसका मैं भाई विभीषण हूं, और आज तक मैं उसके साथ रहा, पर आज वो सब छोड़कर यहां मैं प्रभु रामचंद्र के शरणागत होने आया हूं, कृपया ये संदेश रामचंद्र को आप दीजिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण वाली बात है, विभीषण ने ऐसा अपना इंट्रोडक्शन क्यों दिया? बोल सकता था मैं एक राक्षस हूं, क्यों बोलना था रावण का भाई हूं, क्यों बोलना था इतने साल में उधर रहा? शरणागति का मतलब है स्वीकार करना मेरी गलती। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के शरण जाते हैं तो कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कुपे पड़ी गणाइन जन्म। पश्चाताप होनी चाहिए कि आज तक मैंने जो किया वो गलत था, मैं स्वीकार कर रहा हूं वो गलती थी, और आज प्रभु मैं आपके द्वार पर आया हूं, आपकी शरण लेना चाहता हूं। जब तक हृदय में पिछले किए हुए पाप कर्म के प्रति पश्चाताप नहीं होगी तब तक शरणागति नहीं होगी। जब तक ये लंगर खींचेंगे नहीं तब तक नाव आगे नहीं जाएगी। तो शरणागति के लिए पश्चाताप होना पुराने कर्मों के, बुरे कर्मों के, ये बहुत जरूरी है। विभीषण का नाम क्या है? विभीषण, भीषण मतलब भय पैदा करने वाला। ऐसे कैसे? वो तो धार्मिक आदमी था, बड़ा नम्र था, बड़े मृदु वाक्य बोलने वाला व्यक्ति, तो किसके लिए भीषण? रावण के लिए भीषण। जैसे हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा खतरनाक आतंकवादी, पर प्रहलाद इतना छोटा सा 5 साल का बालक, हिरण्यकशिपु के हृदय में भय पैदा कर दिया। हिरण्यकशिपु के लिए वो विभीषण था, क्योंकि विभीषण लंका के सारे कमियों को, रावण के सारे कमियों को अच्छे तरह से जानता था, इसलिए रावण को सबसे बड़ा भय था। और एक महत्वपूर्ण चीज, विभीषण सीधा राम के पास जाके चरण में नहीं पड़ा, बल्कि वानरों के पास गया जो प्रभु के सहयोगी हैं, मित्र हैं, दास हैं। तो हम डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जा सकते, एक सद्गुरु या वैष्णव भक्तों का संग करेंगे, उनके द्वारा हम भगवान के पास जाना और आसान हो जाता है। ये शरणागति विभीषण अच्छे तरह से जानते थे, दिखा रहे। और पूर्ण रूप से उन्हें विश्वास था कि मैं सही जगह पे शरणागत होने आया हूं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की शरणागत लेता है तो शरणागत लेने वाले की 3 योग्यता होनी चाहिए, शरण देने वाले की 3 योग्यता होनी चाहिए। एक एक्सेसिबिलिटी मतलब कोई भी उनके पास जा सकता है, उनका दरवाजा खोला है। एक शरणागत देने वाला, शरणागति देने वाला, शरण देने वाला व्यक्ति में 3 योग्यता होनी चाहिए। एक, कोई भी उसके पास आकर शरण ले सकता है, उसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, सही में वो महान व्यक्ति है, शरण देने योग्य व्यक्ति है। दूसरा, बहुत दयालु। अगर सचमुच में जाके बोले मैंने हजारों पाप किया है पर आज मैं माफी चाहता हूं, सब चीजें माफ करने के लिए तैयार, पुराने कितनी भी गलती हो, पर अगर सचमुच में कहता है कि मैं जो भी किया गलती अब से नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, तूने ऐसा किया था, ऐसा नहीं, बोले ठीक है अभी तुझे गलत समझ में आया ना, चला जा। और तीसरा, शरण देने की योग्यता, कि कोई भी अभय दान प्रदान करने की योग्यता। अगर 4 गुंडे एक स्त्री को दौड़ा रही है और वो जाके एक आदमी को बोलती मेरे शरण दो, बोला आ जा मेरे पास, और 4 गुंडे आए तो वो क्या मार सकेगा उसको? तो कैसा शरणागति दे सकता है? अभय दान देने के लिए उसकी शक्ति होनी चाहिए, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, तू मेरे पास आ जा, मैं देखूंगा कोई भी शत्रु उसको मैं मारने के लिए तैयार, तब जाके वो व्यक्ति अभय दान देने की योग्यता है उसके अंदर। विभीषण को पूरा विश्वास था कि भगवान रामचंद्र भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कोई भी व्यक्ति उसके पास जा सकता है, उनका दरवाजा हर एक व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वो वानर हो, चाहे वो शबर जात की कोई शबरी हो, चाहे वो गुह राजा हो वन में रहने वाला, चाहे वो पक्षी जटायु क्यों ना हो, जो भी उसकी शरण जाता है वो शरण उसको ले लेते हैं। और बड़े दयालु हैं, कितना भी पापी क्यों ना हो अगर शरण जाता है मानता है तो उसे स्वीकार करते हैं, और उनके अंदर वो क्षमता है आश्रय देने की। और विभीषण रावण के लंका से निकलने के बाद 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड में घूमने नहीं गया, थोड़ा घूम लूंगा मौज मस्ती करके बाद में तो शरणागत कर लूंगा, नहीं, यहां से निकला तो सीधा उधर, बस बीच में समय नहीं गंवाया उसने शरणागति के लिए, ऐसा नहीं नंतर करूँ या आता मी अमेरिका जातो आणि खूब भोग करतो 60 वर्षानंतर शरणागति करतो, अभी थोड़ा भोग करूंगा, पैसा कमाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, बुढ़ापे में वैसे भी आंख दिखता नहीं कान सुनता नहीं, प्रभु मैं आपकी शरण आ गया, अब भी आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुरंत वहां से निकलकर वहां शरण में गया, प्रभु रामचंद्र को आके खबर मिला। अभी रामचंद्र देखिए, प्रभु रामचंद्र ने भी सेम सभा बुलाया, उत्तम व्यक्ति के सभा, सभा को बुलाए और सब वानरों को बैठाए, बोले देखो सुग्रीव आया है, कह रहा है कि विभीषण आया है, रावण का छोटा भाई है, 4 राक्षसों के साथ आया है, अभी आया है और बोलता है शरणागत होना चाहिए, जब हम समुद्र के तट पर खड़े हैं पार करने के लिए। आप लोगों से मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं, सलाह लेना चाहता हूं, आपका क्या मत है, उसको शरण देना चाहिए, इतना खतरनाक राक्षस? आप सोचो ठंडे दिमाग से, आप राम के सभा में बैठे हुए आप भी एक वानर समझ लो, बिना पूछ वाले आप बैठे हो और मालूम है कैसा खतरनाक व्यक्ति है। अभी आप रामायण सुन रहे हो मेरे मुंह से, आपको आपने विभीषण का सारा लक्षण बता दिया, आपको ये नहीं मालूम समझ लो, खतरनाक व्यक्ति, आपके शत्रु का छोटा भाई आके खड़ा हुआ है 4 गुंडों के साथ और बोल रहा है मैं आऊंगा आपके टीम में आना चाहता हूं, क्या दोगे? पूछते हैं प्रभु, अंगद कहता है प्रभु कभी भी ये राक्षस जाति तो राक्षस है ना, बुद्धि आ जाएगी उसकी, कभी भी कुछ ये हमको धोखा दे सकता है, तो इसको ना 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड में रखते, उसको कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा काम नहीं देने का, छोटा छोटा झाड़ू मार इधर मार ये कर, उसको ज्यादा बड़ा काम नहीं देने का, और देखेंगे अच्छा काम करेगा ना अंदर बाद में लेंगे उसको, थोड़ा बाहर रखने का प्रोबेशन पीरियड 6 महीना, बाद में कंफर्मेशन लेटर देंगे उसको। शरव नाम का एक वानर रहता है, वो कहता है एक काम करते हैं, वो 6 महीना बहुत टाइम लगेगा उसको, कंफर्मेशन होते होते हमारा डिफेमेशन हो जाएगा, खत्म कर देगा, जब जाके पोल खोल देगा, मोबाइल में फोन करके बोल देगा हम लोग कितने लोग हैं, कहां कहां हमारी दुर्बलता क्या है, अभी से चेक करना भाई, तुरंत एक्सरे लेके पता करना चाहिए क्या बीमारी है इसका। तो शरभ ने बोला एक काम करते हैं, इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंप देते हैं और इसके पीछे 10 लोग लगा देते और देखते क्या करता है, सचमुच में जाके क्या करता है, करता है कि किसी और को जाके सुनाता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण काम दे दो इसको, प्रोजेक्ट, और देखते कैसा करता है। फिर जांबवान उठते हैं, जांबवान आपको मालूम है बहुत वृद्ध और बड़े बुद्धिमान, वो कहते हैं देखो किस समय में आया ये तो देखो, हाँ अभी इसको समझ में आया, अरे रावण का भाई पैदा होता है अभी समझ में आया इसका रावण का भाई है, ये अभी आ रहा है, और जगह तो देखो अभी सीधा कैंप में आ गया, हमारे छावनी में आ गया है और बोलता है मैं शरण लेना चाहता हूं, और किस परिस्थिति में आया ये तो देखो, भाई ने डांट दिया और ये गुस्से से आ गया, बोला उसने डांट दिया अभी उधर नहीं जाऊंगा, बच्चे लोग बोलते हैं ना मम्मी डांट दिया अभी पापा के पास जाके बैठूंगा, ये भी एक कारण है अरे रावण तो हमेशा डांटता रहता होगा, एक छोट डांट खा के इधर आ गया, ये भी कोई परिस्थिति है? प्रभु मेरे से पूछो, शरणागति के योग्य नहीं है, इसको आश्रय नहीं देना चाहिए, तुरंत वापस भेज दो इसको। महिंद दूसरा एक सेनापति, वो कहता है एक काम करते हैं, इसका एक इंटरव्यू लेते हैं, इसको एक कांच के रूम में डाल के एक इंटरव्यू, ऐसा व्यक्ति को इंटरव्यू लगाओ जो बोले, पुलिस स्टेशन में होते हैं ना कुछ लोग इंटरव्यू करने वाले, उनको लाइट डिटेक्टर मशीन लगा देते हैं, उसको झूठ नहीं बोल सकता, और पूछते हैं तू क्या, अरे किधर से था, अच्छा इधर कहाँ आया, उधर से आता, 8 साल पहले किधर था, 2 दिन पहले तू किधर था, 8 बजे किधर था, घुमा फिरा के ऐसा प्रश्न पूछते हैं, उसके मुंह से उल्टा सीधा निकल ही जाता है वो सत्य। तो निकालने में, सत्य निकालने में होशियार व्यक्ति ऐसे के सामने बैठा के इसका एक इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद अंदर लेते। फिर हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, हनुमान जी कहते कि प्रभु सचमुच में आप जैसे बृहस्पति जैसे व्यक्ति बैठे हुए हो, आपसे अच्छा निर्णय कौन ले सकता है, हम सबको क्यों पूछ रहे हो, आप क्यों मजा ले रहे हो आपको मालूम है क्या निर्णय लेना है, आप ही ले लो, पर क्योंकि आपने पूछा है, आपके शब्द को सम्मान देते हुए मैं कुछ शब्द कह रहा हूं। ये विभीषण के साथ मेरी दोस्ती है, क्योंकि लंका में जब गया था ना, उसने थोड़ा प्रसाद के लिए बुलाया था घर में, मतलब दोस्ती है मेरे, उसको मालूम है वो राम भक्त है, मैं जानता हूं, उसके घर में ही सिर्फ राम का नाम जपता है, पर उसके लिए विभीषण के साथ मेरा थोड़ा क्या बोलते हैं पहचान है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, और इन लोगों की गलती दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इन सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, पर आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और बोलते हैं एक व्यक्ति ने कहा कि इसको 6 महीने में रखो, मूर्ख कहीं का 6 महीने रखेंगे तो पूरा नाश कर देगा ये 6 महीने का, ये फालतू चीज है सजेशन। दूसरा सजेशन क्या था कि एक महत्वपूर्ण काम दे दो किसी का, सर काटने का, काट ही दिया तो हमारा है, तो उसके बाद क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण हो गया ना काम, तो वो सब नहीं हो सकता इस समय में वो भी। और बोलते हैं समय, अरे जब जरूरत पड़ी तब आया है, वो तंग आके वहां से भेज दिया इसलिए वहां आया है, तो इससे योग्य व्यक्ति, इससे योग्य समय नहीं है। और आप कहते हो इसके पीछे एक व्यक्ति को इंटरव्यू करने के लिए लगाओ, वो भी क्या लल्लू पंजू थोड़ी है, वो ऐसा घुमा फिरा के उत्तर दे सकता है, वो भी कोई होशियार, वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये सब जो सजेशन है ठीक नहीं है। मैं तो कहूंगा शत्रु के अच्छी तरह से दुर्बलता और उनके बल क्या है दोनों को अच्छी तरह से जानता है, और वो आया हुआ है, मैं तो कहूंगा उसे तुरंत ले लेना चाहिए। उसको ले लेना अच्छा है, क्योंकि रावण का बहुत ही निकटतम व्यक्ति है और वो रावण की बल और दुर्बल दोनों को जानता है। और इतना ही नहीं, दूसरा कारण यह है क्यों लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की प्रामाणिकता 4 चीजों से पहचानी जा सकती है। एक उसका उद्देश्य, दूसरा उसका आकार, उसका चेहरे का चेहरा देख के, तीसरा उसका चेष्टा व्यवहार, और चौथा उसकी भाषा, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। खास करके जो इनकम टैक्स एक्सपेक्टर होते हैं ना, इसमें बहुत होशियार होते हैं, चोर को देख के पहचान लेते हैं उसके, सिर्फ वो लाइन में खड़े हैं ना उसको देख के बोलते हैं इसको पकड़ो, इसको साइड में ले लो, इसको साइड में ले लो, चेहरा देख के पहचानते लोग उसमें। ये भी एक ज्ञान है, एक प्रकार का विज्ञान है, वो चेहरा देख के पहचान ला। तो बोलते हैं इसका उद्देश्य देखने से पता लगता है कि इसका गलत उद्देश्य नहीं है, ये सीधा सीधा सादा आदमी है, आगे आके खड़ा हुआ है। और इसका जो चेहरा है क्रूर नहीं है, चालाक जैसा, मंत्रा जैसा ऐसा नहीं देख रहा टेढ़ा भाग से, बोले इसका चेहरा जो है इसमें इसका हृदय एकदम साफ लगता है, इसकी आंखों से समझ में आती है, आंख से पता चल जाता है क्रूर आदमी का या भय आदमी का, भय आंख से पता लगता है, इसीलिए सारे पॉलिटिशियन लोग कूलिंग ग्लास पहनते हैं। क्योंकि आंख से उस व्यक्ति का हृदय में क्या चल रहा है समझ में आ जाता है। कोई भयभीत है तो उसकी आंख देखो, कोई चालू है तो उसका आंख देखो, और उसकी जो व्यवहार है, इतना दूर से यहां आया हुआ है और सीधा हमारे बीच आ गया है, और इसकी भाषा जो है साफ साफ है और डायरेक्ट बोल रहा है, घुमा फिरा के बातचीत नहीं कर रहा है, मैं रावण का भाई हूं, मैं उतने साल वहां तक रहा, अभी उससे मैं झगड़ के यहां आया हूं आपकी शरणागत ले, उल्टा घुमा घुमा के नहीं बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है और हड़बड़ी नहीं कर रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, प्रेम से बोल के खड़ा है, जो करना है करो, मैंने कह दिया बस। और इसीलिए, और इसने सुना है कि सुग्रीव को, सुग्रीव के बड़े भाई वाली को आपने मारकर सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठा दिया किष्किंधा में, तो शायद ये भी सोच रहा है अगर थोड़ा जल्दी आ गया तो रावण को मारने के बाद मेरे को भी शायद लंका का अधिपति बना देंगे, उसके लिए भी आया होगा। और इसीलिए मैं कहूंगा इसको हमारे साथ ले लेना चाहिए। पर मुख्य चीज हनुमान जी ने भी नहीं कहा, वहां भी थोड़े वहां भी चूक गए हनुमान जी, सिर्फ उसकी गुणगान कर रहे हैं, पर किस व्यक्ति की शरण आया उस व्यक्ति का गुणगान नहीं बोले। प्रभु मुस्कुराए, बोले हनुमान तुम जो कह रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे सहमत हूं। फिर कहते हैं अरे विभीषण तो छोड़ो, रावण भी अगर आए और कहे, भले झूठ से ही कहे, भले धोखे से कहे कि मैं प्रभु, आप दिखावट के लिए कहे कि मैं प्रभु आपकी शरण आया हूं, फिर भी एक व्यक्ति अगर मुंह खोल के मेरे पास आकर कहता है कि प्रभु मैं आपकी शरण आया हूं, तो मैं उसे नकार नहीं सकता, ये मेरा व्रत है। सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम ये तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, डरो मत। भले धोखा देने के हेतु भी आया हो, झूठ से भी आया हो, पर अगर कहता है मेरे सामने आकर कि प्रभु मैं आज तक जो किया गलत किया, आज मैं आपकी शरण आया हूं, कृपया मुझे आप चरण का आश्रय दीजिए और आप में मैं आज से मैं सुधरना चाहता हूं, भले प्रामाणिकता से भी नहीं बोले, नादान होकर बोल दिए या झूठ मतलब दिखावट के रूप में भी कहे, फिर भी उसके मुंह से अगर ये वचन निकले तो ऐसे व्यक्ति को मैं शरणागत देता हूं, ये प्रभु का वचन है, वचन व्रतम, ये मेरा व्रत है। और फिर कहने लगे तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं अभी तक, न केवल ये राक्षस पर के उसके पूरे राक्षसों का परिवार, पूरे वंश आ जाए, गंधर्व आ जाए, किन्नर आ जाए, यक्ष आ जाए, देवता आ जाए, सब लोगों को मैं अंगुली के एक नाखून के एक जो अग्रभाग है इसमें से दबाकर नष्ट कर सकता हूं। तुमको लग रहा है मुझे डर है कि वो हमारे आकर कुछ नष्ट कर देगा हमारा, मुझे डर है नहीं, सबको एक क्षण में खत्म कर सकता हूं मैं। तो सवाल उठता है कि सचमुच में अगर ये इतना कर तो अभी इतना तक ये नाटक क्यों किया, उसी समय दबा देते ना सीता को, ले गया कौन, ले गया रावण, दबा दिया एक खत्म, तो इतना बड़ा रामायण होता ही नहीं ना। पर रामायण होता नहीं तो हम लोग बैठ के चर्चा क्या करते, शरणागति विभीषण का शरणागति कैसा होता, सुग्रीव का उद्धार कैसा होता, हनुमान जी को सेवा कैसा मिलता, वानरों को इतना सेवा कैसा मिलता, प्रभु रामचंद्र की महिमा कैसे पता लगता, रामायण नहीं होता तो 9 दिन करते क्या हम लोग, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, ये लीला करने आए हैं, इस लीला के द्वारा मनोहर लीलाएं जिसके श्रवण मात्र से भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, शरणागति भाव उत्पन्न होती है, विभीषण जैसे महात्मा का सुंदर चरित्र श्रवण करके, हनुमान जी के सुंदर वीर्य रस का आस्वादन करके हमारे हृदय में होता है, काश मैं भी भगवान प्रभु रामचंद्र की सेवा कर पाऊं, मैं भी विभीषण जैसे आज शरण ले पाऊं। तो भगवान अपने भक्तों के साथ आकर ये सुंदर लीला करते हैं हमारे हृदय को जीतने के लिए। अंत में मैं एक समाप्त करूंगा, एक छोटी सी बात, भगवान की एक खासियत है आप समझ लेना। खासियत क्या है भगवान की? एक अजीब चीज है भगवान के अंदर, दो, एक नहीं दो। एक, भगवान सर्वज्ञ है, है कि नहीं? सब कुछ जानते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि, भविष्य भूत और वर्तमान पूरे तीनों लोकों में, पूरे सृष्टि में क्या क्या चल रहा है सब उनको मालूम है, पर कुछ चीजें उनको मालूम नहीं है। सब उनको याद है पर कुछ चीजें भूल जाते हो, आपको मालूम है? सब मालूम है पर कुछ चीजें मालूम नहीं उनको, अज्ञान है उसको, ज्ञान ही नहीं है उसका। सब चीज याद रखते हैं, सबको याद भी वही दिलाते हैं, पर कुछ चीजें वो भूल जाते हैं सौभाग्यवश। क्या ज्ञान नहीं है? जो एक बार शरणागत लेने आया उसका पिछला सारा चीज वो भूल जाते हैं, वो याद ही नहीं है उनको क्या किया था। एक बार अगर उसने कह दिया कि मैं आपकी शरण में आया, वो अज्ञान, वो भूल ही जाते, वो याद ही नहीं रहता उनको, भूल जाते हैं। और दूसरी खासियत ये है, सर्वशक्तिमान है भगवान, पर ये शक्ति चली जाती है उनकी जब एक प्रेमी भक्त उनके सामने आ जाता है और उस प्रेम से हार जाते हैं। भगवान भागवत में कहते हैं अजित जीतोपी, अजित हैं वो, रण में उनके कोई जीत नहीं सकता, पर भक्त प्रेम से उनको जीत लेते हैं। कोई प्रेम से गए कि प्रभु, जैसे एक छोटा बच्चा है, एक बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ब्रिटिश के, उसने एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट दिया 6 बजे शाम को, और ब्रिटिश लोग समय के पक्के होते, एक मिनट पहले आके बैठते उधर। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट लिया उसने और 6 बजे जाके बैठा, 6:30, 7 बज गया अभी जैसा। तो उसने बोला, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? बोले बिजी है। अरे क्या बिजी है? तो उसने थोड़ा दरवाजा खुला हुआ था, तो मेन बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी वीआईपी था, उसने सिर्फ झाके देख, बोले क्या बिजी है भाई, क्या कर रहे, कोई बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आया क्या? सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और झांक के देखा दरवाजा से, तो प्राइम मिनिस्टर जी क्या कर रहे थे? उनका छोटा सा एक 5 साल का लड़का था, बच्चा बोला, पापा थोड़ा झुको, मैं तुम्हारे ऊपर घोड़ा बन के अभी चलूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर झुक गए और बच्चा घोड़ा बन के 1 घंटे से घुमा रहा है उनको, यही उनका अपॉइंटमेंट है, बिजी है। ये सच्ची घटना है ये। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बोले दुनिया के लिए प्राइम मिनिस्टर है, पर जिससे वो प्रेम करता है, बच्चा जिसके पूर्ण रूप से शरणागत है अपने पापा को, वो नहीं समझता कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये मेरा पापा है बस, उसके लिए वो घोड़े बनने के लिए तैयार हो जाते, अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया चलाने वाले व्यक्ति, तीनों लोकों के नायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक, अपने भक्त के सारथी बन जाते, ड्राइवर बन जाते। ऐसे व्यक्ति को छोड़कर कहां जाएंगे शरणागत के लिए? क्यों हम शरण नहीं ले रहे? यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारा अज्ञान है। तो रामनवमी इस चीज का उत्साह है, ये उत्सव है ये, और उत्सव का एक ही उद्देश्य है कि आज के दिन हमेशा के लिए, पर खास आज के दिन प्रभु रामचंद्र उसी लिए अवतरित हुए कि आप पहचानो मैं कौन हूं, मेरे हृदय की बात जानो, आपसे ज्यादा मैं आतुर हूं कि आप मेरे शरण में आ जाए और आप मेरे धाम में आकर मेरे साथ निवास करें। पर हम कितने मूर्ख हैं, कितने हठी हैं रावण जैसे। मैं ही भगवान हूं, मेरे को चाहिए सीता। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आज के दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें, विभीषण का स्मरण करो, हनुमान जी का स्मरण करो, शबरी का स्मरण करो, जटायु का स्मरण करो, ऐसे महान भक्त लक्ष्मण जी का स्मरण करो, भरत महाराज का स्मरण करो, शत्रुघ्न का सेवा का स्मरण करो। क्या चरित्र, क्या गुण, इनके गुणों को सुन के केवल हमारे हृदय में एक बार भी विचार आए, काश मैं भी थोड़ा ऐसा सेवा कर लूं, मैं भी एक दिन शरण जाऊं, सिर्फ ये विचार आ जाए एक क्षण के लिए भी आपके हृदय में, तो आपके हृदय में सोई हुई जो कृष्ण भावना की कली है वो खिल जाएगी, फूलों कैसे खिल जाएगी। और जब कली खिल जाती है तो उसका सुगंध आता है, तब तक सुगंध नहीं आता। तो जब हमारे हृदय में सुप्त अवस्था नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, अभी कृष्ण प्रेम जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है, पर अगर श्रवण करके ऐसे पवित्र दिनों में पवित्र संग में भक्तों के संग में आकर भगवान का पवित्र नाम, भगवान की पवित्र कथा और भगवान के पवित्र प्रसाद, भगवान के पवित्र दर्शन जो भी होने वाला है, ये सब कर हम एक क्षण में एक पवित्र विचार आ जाए कि प्रभु मैं आपकी शरण आना चाहता हूं, कृपया मेरे हृदय में मैं रावण जैसी प्रवृत्ति है, मैं हठी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, पर एक ना एक दिन मैं आपकी शरणों में आना चाहता हूं, मुझे आप अपनी शरण में लीजिए, ये मेरे अहंकार को निकालकर एक दिन शरणागत करने की बुद्धि दीजिए, शरणागत करने की शक्ति दीजिए। ये विचार आ गए तो आज का रामनवमी आपका सक्सेसफुल, यशस्वी। नहीं तो ऐसे लाखों जन्म हो जाएंगे रावण जैसे घूमते रहेंगे हम लोग। अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी बहुत सुंदर दर्शन है प्रभु रामचंद्र जी का, और एक खास दर्शन आप अभी तक निताय गौरचंद्र का ही दर्शन किए हैं, अभी उसके साथ और दो दर्शन होगा और ये दर्शन हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो लंबी सांस लेकर सतर्क होकर जो सोए हुए हैं उठ जाइए, जो कान बंद करके हुए हैं खोल लीजिए, आंखों को फाड़ फाड़ कर बड़े आतुरता के साथ शरणागति भाव से, जिस प्रकार से द्रौपदी ने आश्रय लिया निस्सहाय भाव से कम एक विचार भले बाद में आए, आज नहीं अगले रामनवमी में आए, पर कम से कम प्रभु एक दिन आपकी मैं शरणा हूं, और ये बुद्धि दीजिए और ये शक्ति दीजिए। ये विचार अगर इस भाव से अभी हम 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे और तत्पश्चात कुछ अनाउंसमेंट और एक सुंदर कार्यक्रम है, एक ड्रामा होने वाला है, बच्चों का सुंदर नाटक जो आपको सीधा त्रेता युग में प्रवेश करा देगी। रामचंद्र सीता लक्ष्मण के साथ चलते फिरते आ जाएंगे और तत्पश्चात कीर्तन और प्रसाद होगा। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री निताय गौरचंद्र की, श्री श्री रामनव महामहोत्सव की, श्री श्री सीताराम की, निताय गौर प्रेमान्दे।